كتابة النبوية والشولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر الشجادية والآثار الباقرية والمهاشر الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرجبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة اللشكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. صلوات علی جان گرامی. بہت تقویت یہ بات ہے کہ ہمارے بہت ہی خشک موضوع کو آپ بہت غور سے نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ اس کے متعلق غور و فکر بھی کر رہے ہیں. اس کا اندازہ ان باتوں سے ہوتا ہے جو مختلف اوقات میں خصوصیت کے ساتھ نوجوان دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی تقویت کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ نوجوانوں کا مجمع بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ بالکل یہ جو مجالس ہیں وہ ایک خاص عمر کی خواتین کی جن کی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں ان کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا. یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے عزیزوں. اس عزاداری کو مجلس کو اس طریقے کے ذکر کے ارینجمنٹ کو کسی بھی صورت میں انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک صدیوں پر محیط تاریخ ہے اور ایک انتہائی پاورفل انسٹیٹیوشن ہے. ایسی انسٹیٹیوشن بنانا اسٹیبلش کرنا بہت مشکل کام ہے اور ہو نہیں سکتے. ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم اس پاورفل انسٹیٹیوشن سے اس کی طاقت کے مطابق فیض نہیں حاصل کر رہے. عزیزو ہم اس جیسا طاقت پر انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے. جب نہیں بنا سکتے تو کیوں نہ اس وقت ان وسائل اس خلوص کے کا ایسا استعمال کیا جائے کہ اس انسٹیٹیوشن کا حق ادا ہو جائے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے ایسی گفتگو کرنے سے کہ جس میں تھوڑی دیر کا جس داتیت اور انسر آ جائے آپ خوش ہو جائیں چار پانچ نعرے لگ جائیں اور اس کے بعد جب اٹھیں تو دامن میں کچھ بھی نہ ہو. یہ اس انسٹیٹیوشن کی توہین ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس رسپانسبلٹی کو جو عزائے امام حسین علیہ السلام کی ہے اس عظیم انسٹیٹیوشن کے تقدس کا خیال بھی رکھیں اور اس ذمہ داری کو حتی المقدور پورا بھی کر سکے. عزیزوں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا अहिया इसके दीनी के उन्वान से किस तरह दीनी फिक्र को जिंदा किया जाए। अभी जो सवाल ही पैदा होता है, क्या हमारा ये काम है कि हम दीन को जिंदा करें, या दीन का ये काम है कि हमें जिंदा करें। उस पर ला ऐसा से दिया जा सकता है, या यू नहीं ना मनु अस्तजीब लिल्लाह वल रसूल ऐसा बाप लम्बा यही को। ऐ साहिबान ईमान, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें आवाज दे, या यू लजीन अमनु अस्तजीब लिल्लाह वल रसूल, तो दौड़ पड़ो उस आवाज पर जो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें दे। ऐसा दाक लम्मा यही तुम, क्योंकि जो दावत में तुम्हें दे रहे हैं उसमें तुम्हारी जिंदगी है। तो दावत अल्लाह की और रसूल की कौन सी है? दीन। इसका मतलब यह हुआ कि दीन में जिंदगी, और जब दीन में जिंदगी है तो किसके लिए? इंसान के लिए दीन में जिंदगी है। अब दीन का काम हमें जिंदगी बख्शना है, और हमारा काम दीन को जिंदगी बख्शना है। क्यों? इसलिए कि हमारे हयात का और जिंदगी का दार मदार दीन पर है। जिस जखीरे पर आपकी जिंदगी का दार मदार हो, आप उस जखीरे की हिफाजत करते हैं। अगर पानी के जखीरे पर आपकी हयात का दार मदार है, तो आप उस पानी के जखीरे की हिफाजत करते हैं, उसे आलूदगी से बचाते हैं, उसे खत्म होने से बचाते हैं, उसके खुश्क होने से बचाव की तदाबीर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस जखीरे पर आपकी हयात मुनहसर है। तो जिस जखीरे पर आपकी हकीकी हयात मुनहसर है, इसे दीन कहते हैं। तो अगर दीन का यह फरीजा है कि या अय्युहल लज़ीना आमनु अस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दाअकुम लम्मा युहयीकुम, कि जब पुकारे अल्लाह और उसका रसूल तो दौड़ पड़ो, इसलिए कि उस दावत में तुम्हारे लिए जिंदगी है। तो जिंदगी के जखीरे को बचाना हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम दीन और फिक्र दीन की अहिया और जिंदगी पर गुफ्तगू आपके सामने जितनी भी हमारी हैसियत और इल्मियत है उसके हिसाब से आपके सामने पेश करते चले जाएंगे। अजी जाने गरामी, हमें कुरान मजीद की आयात अहादीस पैगंबर में बार बार ये तंबीह की गई कि दीन की हिफाजत की जाए, दीन की जिंदगी का ख्याल रखा जाए। और एक उस खुतबे में जो तालिबन अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी खुतबा था, और नौफ बकाली कहते हैं कि जौदा इब्न हबीरा ने एक बड़ा सा पत्थर लाकर रखा, अली इब्न अबी तालिब उस पत्थर पर चढ़ गए। आपने पश्मीना का चौगा पहना हुआ था, तलवार खजूर की हमाइल में गले में लटक रही थी, पैरों में खजूर की छाल से गूंज हुई नालेन मुबारक पहन रखी थी। और उसके बाद आपने वो अजीम शान खुतबा दिया कि लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुकते। उस खुतबे के खिताम पर आपने इरशाद फरमाया, ऐना अखवान लजीना रकबो इल तरीके व मजू इल हक, कहां है मेरे वो साथी और दोस्त, ऐना अखवान लजीना रकबो इल तरीके, तो जो तरीके दीन पर चलने वाले थे, वह मजूल हक, जिन्होंने ज्यादा हक पर कदम रखा और हक के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐना अम्मार, ऐना इब्न तैमान, ऐना जो शहादतैन, कहां है अम्मार, कहां है अबुल हैसम इब्न तैमान, कहां है खजीमा बिनत साबित जो शहादतैन, व इख्वानिल लजीना तरउल कुराना सह कमूहू, मेरे वो दोस्त जिन्होंने कुरान की तलावत की और कुरान से हुक्म किया। बतदब्बर फराइज फा कमूहू, जिन्होंने तदब्बर से अपने फराइज को समझा और उसको नाफिज करने के लिए उठकर खड़े हो गए। वहायत सनतो मैततन बिदतो, जिन्होंने सुन्नत को जिंदा रखा और बिदत को मार डाला। अल्लाह अकबर। आखिरी खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अपने उन दोस्तों का तस्करा कर रहे हैं कि जो दीन के लिए उठकर खड़े होने वाले, फर्श को पहचानने वाले, राह हक में कदम रखने वाले, कुरान को आईन समझने वाले और दीन को जिंदगी और सुन्नत को बाकी रखने वाले और बिदत को खत्म करने वाले। यहां तक के नहज बलागा में आपने इमाम आखरुल जमान को का तस्करा जब किया तो एक बड़े खूबसूरत जुमले के साथ किया, वो यही मैता किताब वही सुनना, जो जिंदा करेंगे उस किताब और सुन्नत को जो बेजान हो चुकी होगी। तो अल्लाह अकबर, ये जिंदा करना सुन्नत का, किताब के मफाहीम का, दीन का, ये बहुत बड़ी बात है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों से इरशाद फरमाया, वाहियो अमरना, हमारे अमर को जिंदा करो। कहा फजंद रसूल, आपके अमर को कैसे जिंदा करें? कहा हमारे जिंदगी के अहवाल बयान करो, हमारे तरीके का तस्करा करो, हमारी गुफ्तगू की तशरीह करो। उनकी गुफ्तगू ऐने कुरान, उनका तरीका ऐने सुन्नत कुरान, उनके अकबाल ऐने सुन्नत कुरान। तो कहा अहियो अमरना, हमारे अमर को जिंदा करो, हमारे तस्करे से कुरान और सुन्नत का तस्करा खुद बखुद होता चला जाए। अब अजीजाने ग्रामी, ये गुफ्तगू जो हमने आपके सामने की, इससे ये पता चला कि दीन बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी असास है, और इस असास को हमें बचाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दीन को जिंदा कर सकते हैं? जिंदा तो वो चीज होती है जो मर जाती है, बड़ी अहम बात है। क्या हम दीन को जिंदा कर सकते हैं? क्या हम अहियाए दीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई फलसफा पेश किया जाए, अगर कोई नुक्ता पेश किया जाए और उसके बदले में कोई उससे बेहतर फलसफा आ जाए, कोई बेहतर रिसर्च हो जाए, तो पुराना फलसफा और रिसर्च जो है वो मर जाती है, उसकी जगह दूसरी रिसर्च ले लेती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और दूसरे बहुत सारे साइंसेस के उलूम में, फलसफे में, मंतक में, तारीख में, तारीख की हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि जिसने पहले एक नज़रिया पेश किया गया, उसके बाद वो लगा कि नज़रिया गलत है, दूसरा नजरिया आ गया, जब दूसरा नजरिया आ गया तो पुराना नजरिया खत्म हो गया। अब दीन की गुफ्तगू जब की जाती है तो क्या आदम के नजरिया लाए वो नूह के नजरिए के आने तक ऑब्सोलीट हो चुका था, या जो नूह लाए वो मूसा और ईसा तक फरसुदा हो चुका था? ये जो मूसा और ईसा तक था वो पैगंबर आखिर जमा तक काबिल अमल न रहा था?
मोहम्मद सलवा। उसका मतलब यह है कि कोई चीज फसूदा नहीं हुई, जो रोजे अव्वल से था वो वैसा का वैसे ही है। तो जिंदा किसे करे, जिंदा उसे करते हैं जो मर जाता है। तब दीन की आया तो नहीं हो सकती, इसलिए कि दीन तो अव्वल से आखिर तक वही है और वैसा ही है। तो जिंदा किस चीज को किया जाए, फिक्र दीनी को, दीन के मुतालिक हमारे सोचने के अंदाज को, दीन के मुतालिक हमारे सोचने के तरीकों को। अहियाए फिक्र दीनी की, जब हम सोचे तो दीनी तरीके पर सोचे। दीन नहीं मरता, दीन हमेशा जिंदा रहता है। जो चीज मर जाती है ना अजीजों, ये नीम मुर्दा और नीम जिंदा रहती है, वो दीन के बारे में हमारा तर्ज फिक्र हुआ करता है। आज हमें सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हम कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना दें, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो पहले से ही मुसलमान है, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, बैतुल्लाह का हज भी अदा करते हैं, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहते हैं, उन मुसलमान जो हम और आप जैसे मुसलमान हैं, हमारे अंदर दीन की फिक्र को जिंदा करने की जरूरत है। आज क्या हमारा सोचने का अंदाज दीनी है या सोचने का अंदाज इस्लामी है? अजीजों आप ये देखिए कि अकवाम आलम में अगर हम मुसलमानों का कंपैरिजन करें उनके साथ, तो अगर सनत और टेक्नोलॉजी में हम उनसे पीछे हैं तो ठीक है पीछे हैं, लेकिन साथ साथ हम इंसानियत में, शराफत में, इखलाकी इकदार में, रूहानियत में भी उनसे पीछे हैं, भी उनसे पीछे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? क्या दीन बेकार हो गया? दीन तो अपनी जगह मौजूद है, बात यह कि हमने दीनी अंदाजे सोच को मिटा दिया। और जब दीनी अंदाजे सोच को मिटाया तो हम पर अकवाम आलम ने मुसलमानों को यह कहकर टारगेट करना शुरू किया कि इनका दीन प्रोग्रेसिव नहीं है। तो क्या वाकई दीन प्रोग्रेसिव नहीं है? अरे जिसके पास नमूने के लिए, जिसके पास अमल को करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, महाज जैसे आला मोहम्मद जैसी आला तख्लीक हो परवरदिगार आलम की, अली जैसी शख्सियत हो, फातिमा जैसा आइडियल हो और हसन और हुसैन जैसे लीडर हो, आप ही बताइए कि फिर गलती कहां हो रही है? दीन भी मजबूत और जो एग्जाम्पल्स हैं, हुआ क्या? हुआ क्या? हमने शीयत, अब हम एक छोटे बड़े कैमरे से, हमने शीयत और बिलाए अहले बैत को एक स्केप का पर्दा बना लिया और उस माशरती इवल है, रास्ते पर चलना खतरनाक है, बढ़कर रोके, हम क्या कर सकते हैं? और फिर तकैया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तकैया, अल्लाह अकबर। इस पर किसी कभी की गुफ्तगु होगी तकैया पर, इसके बड़े डिफरेंट, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमने अपने तन आसानी के लिए और वो जो हमने स्केप का पर्दा डाल दिया ना, उसके लिए हमने उसको इस्तेमाल किया। तो इमाम आएंगे खुद कर लेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जो प्रोग्रेस ना कर सके या आगे ना बढ़ सके, सनत और टेक्नोलॉजी एक तरफ, शराफत इंसानियत और रूहानियत में जो आगे ना बढ़ सके, उसकी वजह यह है कि हमने वो बोझ अपने रहबरों पर डाल दिया कि ये कर देंगे जो कुछ करना होगा। हम क्यों करें, हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं। अल्लाह अकबर। मिलन ने एक जगह कहा कि मजहब अफ्यून है। बड़ी अजीब बात है, मजहब अफ्यून है। और लिनन जो रशिया में इनकलाब लाया, तो कम्युनिस्ट इनकलाब का बानी था, वो बहुत बड़े इनकलाब का बानी था जिसने आधी जर दुनिया को जेर असर किया आपने। उसने कहा ये जो है ये नशा है मजहब। फिर मुख्तलिफ फिलासफर्स ने इसके ऊपर गुफ्तगु की और कहा कि मजहब जो है वो कमजोरों का ताकतवर के खिलाफ बहुत बड़ा इनकलाब है। फिर फिलासफर्स ने इस पर मजीद गुफ्तगु की और कहा आखिर हकीकत क्या है, या मजहब अफ्यून है या मजहब इनकलाब है। तो इस नतीजे पर फिलासफर्स पहुंचे कि मजहब दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। मजहब अफ्यून है कौन सा, जो मैंने और आपने अपनी तन आसानी के लिए ईजाद कर लिया। नशा है ये जो मैंने और आपने अपनी आसानी के लिए ईजाद कर लिया। और इनकलाब है वो दीन और वो मजहब जो पैगंबर लेकर आए। तो अब हम अपने अपने दिल को टटोले कि हम कहां पर हैं, क्या हमारे अंदर इनकलाबी तहरीक है, तब्दीली की आरजू है, प्रोग्रेस करने की कोई ख्वाहिश है। तो इसका मतलब यह कि हम उस दीन पर नहीं हैं जो पैगंबर लाए, हम उस दीन पर हैं जो फकत एक नशे का काम करता है। आज हमारी यही कैफियत है, कहीं गए रिलेशन हो आए, दोनों है पढ़ लिए, जोर जोर से मातम कर लिया, एक अजीब सी नशे की कैफियत आ जाती है, खुश हो जाते हैं, जैसे सैर हो गई तबीयत, इत्मीनान मिल गया हमें। तो इस मजहब ने क्या किया, अगर ये दीन है और मजहब है तो इसने तो एक अजीब रास्ते से इत्मीनान कल्ब दे दिया ना, और एहसास जिम्मेदारी को छीन लिया। जिसने दो हाथ मारकर जोर से सीने को लाल किया उसने कहा बस मैं जिम्मेदारी के बोझ से आजाद। जिसने अलम उठाकर 2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया उसने कहा बस मैंने तो बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया, क्या खिदमत की मैंने इमाम की। यानी आप ये देखिए कैसी अजीब तसल्ली आती है ना, बिल्कुल हकीकत है, अजीब तसल्ली है। एहया फिक्र दीनी, मैं आपका वक्त भी जाया नहीं करना चाहती और अपना भी वक्त जाया नहीं करना। अगर इस सारे प्रोसेस से फकत इत्मीनान कल्ब मिलता है और एहसास जिम्मेदारी नहीं हासिल होता तो ये दीन अफ्यून है। लेकिन अगर इस गुफ्तगु से, इस वक्त के सर्फ करने से, इस वसाइल के सर्फ करने से एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है तो ये वो दीन है जो पैगंबर लेकर आए। अजीजो दीन किस जिंदगी के लिए है, आखिरत की जिंदगी के लिए, दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं। ये दीन इस दुनिया की जिंदगी के लिए है, वहां तो फकत फैसला होगा। आखिरत की यहां कुछ नहीं करेंगे, वहां जाकर दीन अपनाएंगे नहीं। ये दीन इस दुनिया की जिंदगी के लिए है, जो कुछ इस दुनिया में दीन के हवाले से होगा वहां तो फकत फैसला होगा। तो दीन का ताल्लुक तो दुनिया से है ना अजीजों, दीन का ताल्लुक तो दुनिया से। अब इस दुनिया के बारे में इस दीन का क्या नजरिया है, इसलिए कि जब भी हम कोई बात और नसीहत सुनते हैं दीन के ताल्लुक से तो सबसे ज्यादा ही कहा जाता है कि दुनिया बहुत बुरी चीज है, दुनिया बहुत काबिल मजम्मत है, दुनिया से तरके ताल्लुक करना चाहिए। ये दीन आया है इस दुनिया के लिए, तब सवाल ही पैदा होता है कि क्या वाकई दुनिया इतनी बुरी है कि इसे तरके ताल्लुक कर लिया जाए, दुनिया के हर वक्त मजम्मत की जाए। कुरान मजीद जब इस दुनिया के बारे में बात करता है, क्योंकि दीन का ताल्लुक है दुनिया से, हम दुनिया के बंदे और दुनिया के बाशिंदे, इस दुनिया में जब दीन हमारे अंदर आ जाएगा तो आखिरत में हम शायद से बेहतर अंजाम और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में अगर हमारा ताल्लुक दीन से ना रहेगा तो दुनिया क्या है? मीडियम। ये दुनिया मीडियम हो गई ना कि जहां हम और दीन आपस में मिल रहे हैं। अगर ये दुनिया ना हो तो हम और दीन कहां एक दूसरे के साथ मिलेंगे? तो हम इस मीडियम में दुनिया में दीन के साथ मिल रहे हैं। अब जब दुनिया के साथ मिल रहे हैं तो इस दुनिया के बारे में दीन का क्या रवैया है? इरशाद हुआ, वमा खलकना समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। वो जो आसमान और जमीन और उनके दरमियान में जो कुछ हमने खल्क किया ना, कुछ भी खेल तमाशा नहीं है। अब जो लोग मुस्लिह वाइज रिफॉर्मर्स इत्तेदाई गुफ्तगू ये कहकर करते हैं, ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत खराब जगह है, इसे तर्क कर लेना चाहिए, इसे गफलत इससे मुंह मोड़ लेना चाहिए। कुरान कहता है कि आसमान और जमीन वमा बैनहुमा, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ उनके दरमियान में है, लाइबीन कोई खेल और तमाशा नहीं है। वमा बैनहुमा लाइबीन, इनमें से कुछ भी खेल तमाशा नहीं है, सब कुछ बहुत आला और मसलहत के तहत पैदा किया। और फिर यही नहीं, जिस वक्त दुनिया पर गुफ्तगू करता है कुरान, तो अजीजों दुनिया की मुख्तलिफ रोजमर्रा की चीजों की कसम खाता है। कसम मोतबर चीज की खाई जाती है, कसम मोतबर चीज की खाई जाती है। और जब कुदरत कसम खाती है, वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वल नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यख्शाहा वस्समा ममा बनाहा वाज़ ममा तलाहा वल नफ्स ममा सबाहा फल हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाहु अकबर, कसम खाई जा रही, कसम मुतबर चीज की होती है। वशम्स वज़ुहाहा, कसम है सूरज की जो रोशनी के साथ है। वल क़मर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कि जब डूब जाए सूरज तो रोशनी की जिम्मेदारी उसके कंधे पर पड़ जाए। वल्लैल इज़ा यख्शाहा, उस रात की जो अपने हिसार में सबको ले लेती है। वन्नहार इज़ा जल्लाहा, वो उस रोशनी और सुबह की कि जिसमें इंसान अपनी तकौदों का सफर का आगाज करता है। वल्अर्ज़ वमा सबाहा, वो फर्श जमीन का जिसे हमने बिछा दिया। बस समा वमा बनाहा, और उस आसमान की जिसे तुम्हारे पर छत करा दिया। वह नफ्स वमा सवाहा, और उस नफ्स इंसान की अहियाए फिक्र दीनी, सारी मोतबर चीजें हैं, सारी कौन कहता घटिया है, बेहकीकत है, काबिल मजम्मत है। अरे कसम मोतबर चीज की खाई जाती है, और जब कुरान कसम खा रहा है तो चांद की, सूरज की, दिन की, रात की, जमीन की, आसमान की, और वह नफ्स वमा सवाहा, तेरे नफ्स की इंसान फल हमा फुजू रहा व तक्वाहा, कि जिसके अंदर ये कुव्वत फैसला अक्ल की बुनियाद पर है कि क्या नेकी है क्या खुश को फजूर है। मोतबर चीज नफ्स। फिर देखिए, वक्तीने व जैतूने व तूर सीनीना व हाजल बलद अमीन, कैसा अंदाज गुफ्तगू है पुराने करीम का। कसम खाई जा रही है जैतून की, अंजीर की, और उस शहर की, बलदुल अमीन, जिस पर सादिक और अमीन चलते हैं। वतीन व जैतून व तूर सीनीना, व तूर सीना का जहां मूसा को कलाम का शरफ मिला, मोतबर चीजें। वह हाजल बलदुल अमीन, वो शहर शहर अमीन जिस पर सादिक और अमीन चलते। फिर अजीजो कसम खाई, बल आदियात जबहन फल मूरियात कदहन, कसम है ताकत के साथ दौड़ने वाले घोड़ों की, कि जब पत्थर पर उनकी टापें टकराती हैं तो शोले निकलते हैं, शोले निकलते हैं। तब वो घोड़ों का दौड़ना, ताकत से पत्थरों पर टापों का टकराना, आग के शोलों का निकलना, ये किन बातों की अलामतें हैं? ये इनकलाब की अलामतें हैं, इनकलाब की अलामतें हैं। उनकी कसम खाई और फिर कहा वह तरा फी खलक़ रहमान फ़ज़ल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। ये जो खिलकत है ना रहमान की, इसमें चारों तरफ आंख घुमाकर देखो, फ़ज़ल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। जब आंख में देख लिया तो बताओ कोई कमी, कोई बेशी, कोई छेद, कोई खराबी रह गई? रह गई कोई खराबी? कुछ रह गया बाकी? अल्लाह अकबर, जब ये कुछ भी नहीं रहा तो आप अब बताइए कि कैसे कहें दुनिया बुरी है? इतनी मौजिज़ और इतनी मोतबर कि जिसके रिस्क मोतबर, जिसके जानवर मोतबर, जिसके सुबह और शाम मोतबर, जिसके सूरज और चांद मोतबर, जिसके जमीन और आसमान मोतबर। अगर ये भी है, फिर साथ में ये कहा कि हयात दुनिया बहुत खराब है। हयात दुनिया का तस्करा किया कुरान मजीद ने बार बार, दुनिया खराब है नहीं, हमने यहाँ पे फैसला कर दिया दुनिया खराब नहीं है। कुरान ने कहा नहीं, काबिले मजम्मत नहीं। अब क्या हयात दुनिया खराब है? दुनिया में रहना खराब है? अजीजो, अगर हयात दुनिया ना हो तो हयात आखरत कैसे होगी? ये हयात दुनिया ही तो है ना जो हयात आखरत तक ले जाएगी। लेकिन जिस वक्त हयात दुनिया का तस्करा कुरान मजीद करता है और उसे छोटा दिखाता है, जैसे सूरह यूनुस ने कहा इनमल हयात दुनिया कमाई नंजल्लाह मिन समाए फक्तल बही नबात अल अर्ज मिम्मा याकुलुन नासु वल अनाम हत्ता इज़ा ज़ख़रफ़ुल अर्ज़ ज़ख़रफ़ुहा व ज़ुनिया ज़ुय्यिना ज़ुन्ना अहलुहा इन्नहुम क़ादिरून अलैहा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफक्करून वल्लाहु यद'ू इज़ा दारुस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। सूरह यूनुस हयात दुनिया पर गुफ्तगू। वक्त कम है, तेजी के साथ हम अपनी गुफ्तगू को मंजिल के इख्तिताम पर पहुंचाएं। हयात दुनिया पर गुफ्तगू की तो कहा इनमल हयात दुनिया, अरे ऐसी है हयात दुनिया कमाई नंजल्लाह मिन समाए जैसे आसमान से पानी गिरा फाख्तलक बही नबातुल अर्ज़ और उसके गिरने से फौरन जमीन से सब्जा उग गया मिम्मा याकुलुन नासु वल अनाम और तुमने भी खाने लग गए, नास ने भी खाया, फसलें हो गई, बारिश में फसलें हो गई और जानवरों ने भी खाया। फिर हुआ यह कि इन्नहुम कादिरून अलैहा, जब तुमने वो हरियाली देखी तो सब तुम ये समझे कि अब तो हम बड़े कादिर हो गए, बड़े ताकतवर हो गए, देखो सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। हत्ता इज़ा ज़ख़रफ़ुल अर्ज़ ज़ख़रफ़त ज़ुय्यिना अहलुहा, यहाँ तक के दिन को या रात को हमारा हुक्म आ पहुँचता और ऐसे सब कुछ खत्म हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। देखिए ना, थोड़े दिन बारिश होती है, सब्जा हर तरफ नजर आता है, फिर एक महीने बारिश ना हो तो बिल्कुल लगता है कि हर तरफ धूल उड़ रही। सजाले का मुफस्सिल आयत लिक़ौमिन यतफक्करून, ये निशानी है अल्लाह की तफक्कुर करने वाले। और मकसद क्या है? मकसद क्या है? वल्लाहु यदू इदर दारुस्सलाम, कि अल्लाह तुम्हें दावत दे। देखिए दावत बड़ी खूबसूरत चीज है, डांट कर बुलाना और है, हुक्म दे के बुलाना और है, दावत दे के बुलाना और। वल्लाहु यदू इदर दारुस्सलाम, हम तो तुम्हें सलामती के घर की तरफ दावत दे रहे हैं। वो यहूदी मन यशाओ इला सिरात मुस्तकीम, और चाहते हैं कि तुम्हारी हिदायत कर दें उस सिरात की तरफ जिसे सिरात मुस्तकीम। तो आप जब हयात दुनिया को कितना छोटा दिखाया, बस इतना मोहलत और इतना वक्फा दिखाया कि जैसे बारिश के गिरने से सब्जा होता है, और बारिश इधर बंद हुई और चंद दिनों में सब्जा घास फूस के अंदर तब्दील हो गया, बस इसे कहा हयात दुनिया। तो इसका मकसद हयात दुनिया को घटिया दिखाना नहीं था, बल्कि इंसान की वक़्त में इजाफा करना, इंसान की अपनी वक़्त में इजाफा करना था कि जो शब रोज तुम गुजार रहे हो उसकी इतनी सी हकीकत है, तुम इससे बहुत बुलंद हो। हम तो चाहते हैं कि इस सब्जे के खेल से, इस रंग और बू से तुम आगे की तरफ देखो। वल्लाहु यदू इदर दारुस्सलाम, तवज्जो तुम्हारी दारुस्सलाम की तरफ होनी चाहिए, दावत वो कबूल करो। दुनिया बुरी नहीं है, हयातें दुनिया बुरी नहीं है, तवज्जो दारुसलाम की तरफ होनी चाहिए। ये हकीकत इंसान को बढ़ाना है, हकीकत इंसान को बढ़ाना। तब दूसरी बात ये हुई, तफसीर ने लिखा कि इन दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन हकीकत बात यह है कि दुनिया से ताल्लुक बुरा है, दुनिया में दिलचस्पी बुरी है। पहली चीज तो हमने आपको बता दी, दुनिया भी बुरी नहीं है, हयात दुनिया भी बुरी नहीं है, दोनों चीजें बड़ी मोहतरम है कुरान में। फिर कहा नहीं, दुनिया से ताल्लुक बुरा है, दुनिया में दिलचस्पी बुरी है। और जीजो इसे भी देख लेते हैं, क्या दुनिया से ताल्लुक बुरा है, इसमें दिलचस्पी बुरी है, इसमें तकोदो करना बुरा है। क्या ये दिलचस्पी जो दुनिया से इंसान को होती है, और हवाले क्या हैं? माँ बाप हवाला है इस दिलचस्पी का, औलाद हवाला है इस दिलचस्पी का, माल हवाला है इस दिलचस्पी का, इज्जत और मर्तबे की ख्वाहिश हवाला है इस दुनिया का। तो क्या ये सारी दिलचस्पियां फितरी हैं या मशनूई हैं? क्या हम एक दूसरे को देखकर ही दिलचस्पी अपने अंदर पैदा करते हैं? वो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रहा है, मैं भी कर लूं, उसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत कर लूं। क्या ये फितरी है या मशनूई है? अगर ये फितरी है तो फितरत है तो कोई भी चीज जो है वो वमा बहना हुमा लाइबीन, खेल तमाशे के लिए तो कुछ पैदा ही नहीं किया, कुछ भी पैदा नहीं किया खेल तमाशे के लिए। अगर फितरी है ये, आप ये देखिए कि जितने भी उजू पैदा किए, आजा पैदा किए, कोई एक उजू बता दीजिए कि जो बेकार था, एक उज भी बेकार नहीं पैदा किया, सारे की कोई ना कोई मसलहत है। तो हर फितरी ख्वाहिश की भी कोई ना कोई मसलहत है, और अगर ये फितरी ख्वाहिशात मसलहत के तहत न होती तो अजीजो ये दुनिया का निजाम नहीं चल सकता था। सूरह रूम में कि जहां इंसान की हकीकत, उसकी नींद और बहुत सारी तदब्बुर और तफक्कुर की बातें की गई, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात थी उस निजाम में दुनिया के बारे में। वमिन आयात ही इन खलक लकुम अनफुसकुम अज़वाजन लितस्कुनू फीहा वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमतन इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। मैंने फितरी जो इंसान का लगाव है ना उस पर गुफ्तगू करो। विभिन्न आयात ही इन्ना खलकना लकुम अनफुसकुम अज़वाजन, हमारी आयतों में से और शनाख्त में से और पहचान में से एक आयत यह है कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। अब अगर ये इब्तिदा ना हो, ये नुक्ता ना हो, तो ये फैल कर पूरा कौम कबीला मुल्क दुनिया कैसे बने? तो हमने ये हमारी आयतों में से और निशानियों में से है कि जो हमने ये खल्क कर दिया, ले तस्कनू फीहा ताकि राहत मिले, वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, और उसके बाद उस जोड़े में हमने मवद्दत मोहब्बत और रहमत का अंसर डाल दिया। इन नफी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, ये निशानी है हमारी तफक्कुर करने वालों के, तफक्कुर करने वालों के। तो अजीजो अब अगर ये जोड़ा न बनता, जोड़ा बनाया क्यों? नस्ल इंसानी आगे बढ़े, जोड़ा बनाना फितरत, नस्ल का पैदा होना फितरत, फिर उस नस्ल के लिए जद्दोजहद करना फितरत। तो आप ये देखिए कि कितनी एक्टिविटी जनरेट हो रही है इससे, मोहब्बत की एक्टिविटी अपनी जगह पर है, माशी एक्टिविटी, ऐन फितरत है। फिर अगर ना बनाता तू जोड़े, ना खल्क होता है खानदान, तो क्या जरूरत थी तकद्दो करने की? एक इंसान के लिए तो बहुत छोटी सी जिंदा रहने के लिए जरूरियात हैं जो वो पूरी कर सकता है। ये सारी तकद्दो किस लिए करता आदमी? एक खानदान, एक औलाद, बच्चे, फिर वालिदैन, फिर एक्सटेंशन। तूने कहा ना कि ये आयत है हमारी कि हमने जोड़ा बना दिया और फिर जोड़े में मवद्दत और रहमत को रख दिया, ये तफक्कुर की निशानी। अब उस कि ये ताल्लुक दुनिया से फितरी है, ये मस्नूई है। अगर मस्नूई होता तो आगे न चल पाता। रोज अव्वल से आपने देखिए, छोटा सा घर, फिर एक खानदान, फिर एक कबीला, फिर एक कौम, फिर फैलती चली जा रही है दुनिया। तो पता चला ऐन फितरत है। जब फितरत है ये, इसका मतलब यह है कि दुनिया के लिए तकादो करना, ओहदा और मनसब की तलाश करना, इज्जत और आबरू की जस्तजू करना, माल और दौलत के लिए और अपनी माशी खुशहाली के लिए जस्तजू करना, इल्म की राहों में तकादो करना, ये सारा का सारा फितरी अमल है। तो अब जो ये कहते हैं कि ये दुनिया बेकार है, ताल्लुक बेकार है, रास्ता बेकार है, इसका मतलब है कि ताल्लुक भी फितरी है और रास्ता भी फितरी है और जितनी तकादो है इस दुनिया में वो भी फितरी है, ये तकादो भी फितरी है। तो ये बात भी यहां पर फलित हो गई। तब हकीकत है दुनिया इस दीन की नजर में क्या है? अहया फिक्र दीनी। अब दीन बताए कि उसका दुनिया के बारे में क्या नजरिया है, कि लोगों के जितने नजरिए हैं वो तो कुरान ने नेगेट कर दिए। दीन ने नजरिया बताया, अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात खैरा इंदा रब्बका सवाबन व खैरा अमलन। ये माल और ये औलादे, वल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये हयात दुनिया की ज़ीनत है, जीनत है। बुराई नहीं कहा, खराबी नहीं कहा, मस्नूई रुझान नहीं कहा, जीनत कहा, जीनत कहा। बल बाकियात सालिहात खैरा इंदा रब का सवाबन व खैरा अमलन, लेकिन बाकी रहने वाली चीजें कौन सी हैं? तुम्हारी दुनिया में की हुई नेकी है, लेकिन व खैरा अमलन तुम उम्मीद जिससे कर सकते हो ना, वो तुम्हारे अमाल सालिह, यानी उम्मीद तुम माल पर न रखना, ये है दुनिया का, दीन के, दीन का दुनिया के बारे में नजरिया। और उम्मीद न रखना औलाद पर, ये है दीन का दुनिया के बारे में नजरिया, कि दुनिया ना बुरी है, न तरके दुनिया होना चाहिए, न हयात दुनिया बुरी है, सब कुछ जीनते हैं, लेकिन भरोसा और उम्मीद न रखना। इस तो दीन का नजरिया ये है, न दुनिया बुरी न दुनिया का ताल्लुक बुरा। बुरी जो चीज है कि दुनिया पर भरोसा कर लो, दुनिया से उम्मीद वाबस्ता कर लो, और दो बातें खुसूसियत के साथ बयान की, अल माल वल बनून, औलाद से उम्मीद, माल से उम्मीद, और यही इंसान की सारी जिंदगी की तकादो इन्हीं दो चीजों पर होती है। बाकी सारी चीजें एक्सटेंशन है, ये औलाद और ये माल, बाकी सारा उसका फैलाव है। तो ये दो चीजें जिसके लिए तू इतनी तकादो करता है, सारी जीनत की चीजें हैं। बुरी नहीं कहते हम, खराबी नहीं कहते हम, इसके अंदर बुरा नहीं मानते हम इसका, इस पर भरोसा नहीं करता। आहिया फिक्र दीनी, ये है दीनी फिक्र, कि भरोसा ना हो, उम्मीद ना लग जाए, ये औलाद काम आएगी, ये माल काम आएगा। काम क्या आएगा? बाकियात सालिहात, बाकियात सालिहात, अल्लज़ीना ला यरजऊना लिकाएना वल्लज़ीना वारजू बिल हयात दुनिया। जब लोगों के अंदर इस बात की ख्वाहिश नहीं होती कि वो हमसे लिका करेंगे या हमारी तरफ पलट कर आएंगे, वारजू बिल हयात दुनिया व आसमानों में ही, और राजी हो जाते हैं हयात दुनिया पर और इत्मीनान महसूस करते हैं दुनिया के ऊपर, وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں.
دنیا کے بارے میں دین کا رویہ یہ ہے کہ ایک امید نہ رکھی جائے, امید نہ رکھی جائے, سارے کام کیے جائیں امید نہ رکھی جائے. دوسری, لقائے پروردگار کی آرزو کی جائے اور اس دنیا پر اطمینان نہ کر لیا جائے, لقائے پروردگار کی آرزو. اور پھر کہا وہ حب الشہبات من النساء والبنین والقوانین المنتقر الحسینہ والخیل والمسومت والانام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا. زینت چھا گئی تو المقنطرتے والذهب والفضه والخير والمسومته والانام والحرس.
محبتیں دل میں بیٹھ گئیں بیٹوں کی, عورتوں کی, سونے اور چاندی کی, مال اور دولت کی, کھیتیوں کی, جانوروں کی, ذخیروں کی, یہ سارا حیات دنیا. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرت فما متاع الحیات دنیا الا قلیلا. اگر تم اس حیات دنیا پر راضی ہو گئے, اس حیات دنیا پر
ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرت, اور آخرت کے مقابلے میں اس پر راضی ہو گئے,
فما متاع الحیات دنیا من الاخرت الا قلیلا, تو اس بات کو اچھا طرح سمجھ لو کہ یہ اتنا خود جو ہے نا حیات دنیا کے اندر, یہ متاع آخرت کے مقابلے میں بہت اتنا سا. یہ ہے دین کے بارے میں, دین کا دنیا کے بارے میں ایجنڈا.
کہ ساری تکو دو ہو, ساری بھاگ دوڑ ہو, ساری زینتیں ہوں,
لیکن اس زینت سے لقائے پروردگار فراموش نہ ہو جائے, اس زینت پر تکیہ نہ ہو جائے, اس زینت پر بھروسہ نہ ہو جائے, اس زینت سے امید نہ لگ جائے.
اور یہی سمجھا جائے کہ جتنی بھی زینت ہے
متاع آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی, اور متاع آخرت کیسے تلاش ہوگی, باقیات الصالحات, باقیات الصالحات, وہ باقی رہنے والے نیک عمل, وہ باقی رہنے والے نیک عمل جس کے ذریعے سے متاع آخرت بھی انسان خرید سکتا ہے. اب عزیزان گرامی, ایک چھوٹی سی مثال سے آپ یہ سمجھیے کہ جیسے میں کوئی بچہ ہے, فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں تو بچہ فطرت سے بہترین نظر, ایک بچہ ہے, اس کا شوق یہ ہے کہ وہ سارا دن کھاتا رہے اور کھیلتا رہے, پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا. کیا کھانا برا ہے؟ کھیلنا برا ہے؟ نہیں. لیکن ان دونوں چیزوں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ علم کا حصول, پڑھنا لکھنا,
کھائے بھی کھیلے بھی, یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. کھیلنا ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے, کھانا صحت کے لیے لازمی ہے, لیکن مقصد کیا ہے؟
پڑھنا اور لکھنا. اب اس مقصد کی طرف رغبت دلانے کے لیے ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں, سختی بھی کرتے ہیں, پابندی بھی لگاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟
کھیل پر پابندی لگا دیتے ہیں, کھانے کے وقت پر ڈانٹتے ہیں,
سب کچھ کرتے ہیں نا. کیونکہ کھانا برا تھا یا کھیلنا برا تھا؟ نہ کھانا برا تھا نہ کھیلنا برا تھا, لیکن
اچھے دونوں ہیں,
لیکن بہتر سے بہتر کی تلاش.
جو بہتر تھا اس کی طرف ہر طریقے سے رغبت دلائی. تو قرآن نے کہا کہ نہ اس دنیا کی کھیتیاں بری, نہ بیٹے برے, نہ خواتین بری, نہ سونا برا, نہ چاندی برا, سب اچھا. سب اچھا, سب اچھا, لیکن اچھے سے اچھے کی تلاش. اگر ماں باپ اسے کھیل اور کھانے پر بھروسہ کر لیں تو کبھی کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتا. کہ بہت اچھا کھائے گا بہت اچھی صحت بن جائے گی, کتنی بھی اچھی صحت بن جائے وہ صحت کامیابی نہیں دلا سکتی. تو کتنی بھی جمع ہو جائیں یہ چیزیں حیات آخرت میں کام نہیں آ سکتی. سب اچھا ہے, سب چیز ہونی چاہیے, ہر ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن نظر کہاں ہو؟ حیات آخرت باقیات الصالحات. امیر المومنین نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بڑی کم نصیبی ہے کہ اگر تم اس دنیا کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھو, بڑی کم نصیبی ہے کہ تم اس دنیا کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھو. یہ تو سپورٹنگ فیکٹرز ہیں لائف کے, یہ مال, یہ اولاد, یہ چاروں طرف ایکسٹینشن, یہ پھیلاؤ, یہ سپورٹنگ فیکٹرز ہیں, یہ مقدر نہیں ہے. اتنی چھوٹی چیز کو مقدر سمجھ لیا, اتنی گھٹیا چیز کو مقدر سمجھ لیا, یہ ساری زینتیں, یہ مقدر نہیں ہے, مقدر کہیں اور ہے. بڑے گھاٹے کا سودا, امیر المومنین کے الفاظ ہیں, بڑے گھاٹے کا سودا ہے یہ کہ اگر تم اس دنیا کو اپنا مقدر سمجھ, اور جب اس دنیا کو اپنا مقدر نہیں سمجھا تو ذو حسم کی پہاڑیوں پر جدا کر حضور کے لشکر نے گھیرا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر کے بعد ایک خطبہ دیا جس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا, من رائے سلطان جائرن ناقصن لحدود اللہ یامل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, کہ جو ایسے سلطان جابر کو دیکھے کہ جو ظلم اور عدوان کے ساتھ حکومت کرتا ہے, سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے, حدود الہی کو توڑتا ہے, لازمی کہ اس کے خلاف اتر کھڑے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں اور اس خرابی سے دنیا کو نجات دلائیں. محمد حسین علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا, تلوار پھینک کر آپ گاڑ چکے تھے زمین میں اور ہاتھ آپ کا قبضہ چل رہا تھا. ناقصن لحرم اللہ مخالفن لسنت رسول اللہ, نہ حرم خدا کی, حرم خدا کی مخالفت ہونے دوں گا, نہ سنت رسول کو لٹنے دوں گا. یہ ساری تقریر جب آپ کر چکے تو وہ راستے قریب آئے اور اس نے کہا, فرزند رسول, یہ جو کچھ آپ نے کہا کیا یہی آپ کا مقصد ہے؟ کہاں کہاں, تو کہا انی اشکر اللہ فی نفسے کا, کہ بس پھر میں آپ کو آپ کے نفس کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں, پھر میں آپ کو آپ کے نفس کے بارے میں یعنی آپ کی جان کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں کہ آپ قتل کر دیے گئے. اگر یہ ارادہ ہے آپ کا, اگر دنیا مقدر ہوتی نا عزیزو, اگر یہ دنیا مقدر ہوتی تو نہیں نکلتی مدینے, اگر یہ دنیا مقدر ہوتی نا تو نئی پانی کا ذخیرہ لٹا دیتے بھور کے پیاسی لگ سکتے. مقدر نہیں ہے دنیا, اس سے آگے کا سفر بلند کا سفر, یہ چیزیں اس آگے کے سفر کو سپورٹ دینے کے لیے ہوتی ہیں. کہا میں انی اذکر اللہ فی نفسے کا, فرزند رسول میں آپ کو آپ کے نفس کے بارے میں ہوشیار کرتا ہوں. آپ کا فکر امام حسین علیہ السلام نے عالم جلال میں حضور کی طرف دیکھا اور کہا بالموت تخفنی, ارے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, ارے حیات دنیا کا ختام ایک ایسی منزل پر ہو جسے شہادت کہتے ہیں, اور کس لیے؟ شرفا کی. ارشاد فرمایا آپ نے شرفا کی عزت کو بچانے کے لیے, غریبوں کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے, عزت داروں کے سروں پر آسرا باقی رکھنے کے لیے, اگر ایسے میں میں قتال کروں اور بچ جاؤں تو بھی میرے لیے عزت ہے, اور قتل ہو جاؤں تو بھی میرے لیے عزت. یعنی حیات دنیا کی انویسٹمنٹ ایک ایسے چیز میں کر دوں جسے ہمیشہ کے لیے شرافت انسان بحال ہو جائے. اللہ اکبر, ایسی انویسٹمنٹ کسی نے کی؟ ایسی انویسٹمنٹ کسی نے کی؟ دن موت تخوف نہیں, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, ارے میری موت ہی تو وہ انویسٹمنٹ ہے جو لا الہ الا اللہ کو بھی باقی رکھے گی, محمد رسول اللہ کو بھی باقی رکھے گی, شرافت انسان کو بھی باقی رکھے گی. حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ ہے یہ دین کی طرف, انسان کی طرف انویسٹمنٹ. گفتگو ختم ہو گئی, اب آہستہ آہستہ سفر آگے کی طرف بڑھ رہا. حر نے ادب سے گھوڑا آپ کے گھوڑے سے دور رکھا ہے, اس کا لشکر آپ کے لشکر سے دور چل رہا ہے. یہاں تک کہ قریب کربلا اس لشکر کا حکم آیا ابن زیاد کی طرف سے کہ گھیر لے امام حسین, اور پھر اس کے بعد حر کا امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے قریب آنا, آپ کو رکنے کے لیے کہنا, آپ کے لجام فرش پر ہاتھ ڈالنا, آپ کے لجام فرش پر ہاتھ ڈالنا, اور اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ لقائے خدا کا سودا ہے, یہ حیات دنیا کو مقدر سمجھنے والوں کے لیے تو بڑے خوف کی بات ہے, کہ جن کا سفر اس مقدر کے علاوہ کہیں ہو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ان کے لجام فرش پر ہاتھ ڈال دے. ادھر حر نے لجام فرش پر ہاتھ ڈالی, ادھر عالم غیظ میں فرزند علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. دشت بلا ہے, تنہائی کی منزلیں ہیں, گھر چھوٹ چکا ہے, ساتھ میں جنگجو نہیں ہیں, بچوں بوڑھوں تھوڑے سے جوانوں کا ایک قافلہ ہے, بیویاں ساتھ ہیں, اس میں قبال غیظ امام حسین علیہ السلام کا, تو جو سودا ہے چوائس کا وہ تو ہوگا, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. اور تیری ماں تیرے غم میں روئے. اللہ اکبر, یہ دعا تھی, یہ بد دعا تھی. امام 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 نے دعا دی یا بد دعا دی؟ اللہ اکبر. اور سواری کو چھوڑ کر ہٹ گیا حسین, دستے بلا میں اتر گئے, سات گھوڑے تبدیل ہو گئے. نوی محرم کو خیموں میں پانی نہیں رہا, بغیر ہمدانی چند ساتھیوں کو لے کر گھاٹ پر مشکیں لے کر گئے, پانی بھر کر لائیں, چند مشکیں بھری گئیں, پانی لے کر آئے, خیمے کے سامنے پانی کی مشکیں رکھ دیں, بچوں کو آواز دی, آؤ پانی آ گیا. پیاسے بچے شدت جذبات میں ایسے دوڑے, مشکوں سے لپٹ گئے, بے دہانی میں دھانہ مشک کھل گیا. وہ محنت سے لایا ہوا پانی جلتی ہوئی ریت پر بہنے لگا, وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی, اور پھر شب عاشور آ گئی, اور خیموں سے لطش کی صدائیں, چھوٹے بچوں کی سسکنے اور بلکنے کی آوازیں, اور ادھر حر اپنے خیمے میں بے چین, نہ کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے. غلام نے بھائی کو جا کر خبر دی کہ آج میرے آقا کا احوال برا ہے, نہ معلوم کل کے جنگ سے خوفزدہ ہے یا کون سی ایسی پریشانی ہے, صبح سے کچھ کھایا نہیں, پانی پیا نہیں, بات کی نہیں. بھائی خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا, حر نے کوئی جواب نہیں دیا, بھائی کا ہاتھ پکڑا اور لشکر کے پچھلے حصے سے نکل کر اس مقام تک لے کر آیا جہاں سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں.
उस मकाम पर पहुंच कर भाई से पूछा, तुम्हें कुछ सुनाई देता है? भाई ने कहा हाँ, मुझे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आती है। कहा और भी कुछ सुनाई देता है? कहा हाँ, वो अलतश पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्यासे हैं। कहा पता है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं घेर कर लाया इस दस्ते बला में फरजंदे अली और बतूल को, और अब समझ में नहीं आता इस खता का क्या कफारा हो। वापस पलट आया, वापस खेमे में पलट आया और खेमे में आकर भाई को फैसला सुनाया कि अब कल मेरी लड़ाई इस लश्कर की तरफ से नहीं बल्कि उस लश्कर की तरफ से होगी। यह कहकर गुलाम को हुक्म दिया, घोड़े लेकर इस बहाने से निकल कि तू इन्हें पानी पिलाने ले जा रहा है। लश्कर से एक जर्नैल का निकलना आसान नहीं हुआ करता। एक सिपे सालार का फौज को छोड़कर निकल जाना खेल नहीं हुआ करता। घोड़े निकाल और ऐसे लेके चल जैसे दरिया के घाट पर पानी पिलाने ले जा रहा है। गुलाम रात की तारीकी में घोड़े लेकर निकल गया और वो रात उधर हुसैन ने इबादत खुदा में गुजारी, इधर हुर ने टहल टहल कर और माफी मांगने के तरीका सोचते सोचते गुजारी। हुसैन इब्ने अली ने नमाज फजर तमाम की और भाई को हुक्म दिया, हमारा मेहमान आ रहा है, जाओ इस्तकबाल करो। अहले लश्कर हैरान है, हुसैन इस तख्ते बला में चारों तरफ से नाकाबंदी, अब कौन सा मेहमान? हुक्मे इमाम किसी ने नहीं पूछा। बड़े अब्बास देखा घोड़े पर हुर चले आ रहे हैं। अब्बास अलंदार को देखा, अपने आप को घोड़े से गिरा लिया, कदमों से लिपट गए। कहा बहुत आज आज मुझे आपकी हिमायत की जरूरत है, आज मुझे आपकी हिमायत की जरूरत है। जनाब अब्बास उठाया, सीने से लगाया, भाई तुम हमारे मेहमान हो। कहा मुझे मजीद शर्मिंदा न करें, आज बस आका से माफी दिलवा दें, आज माफी दिलवा दें। और हुसैन अब्बास कहें भाई तू हमारा मेहमान है, भाई तू हमारा मेहमान है, और हुर कहें बस माफी। यहाँ तक जनाब अब्बास ने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हारे मुंतजर। अल्लाहु अकबर। उस वक्त हुर ने कहा ए अलमदार लश्कर हुसैनी, मुझे ऐसे ले चलो आका की खिदमत में जैसे मुजरिम को ले जाते हैं, मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दो, मेरे गले में रस्सी डाल दो और फिर ऐसे ले चलो जैसे मुजरिम को ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये दरख्वास्त कबूल नहीं हुई हुर की, लाए गए खिदमत माली इमाम आली मकाम में, फकत कदमों पर सर रखा, उठाने की ताब नहीं है। फरजंदे रसूल ने कमाल शफ़क़त से उठाया, सीने से लगाया और फिर कहा आज हुर मेरी माजरत कबूल कर, तू मेरा मेहमान है लेकिन तेरी ज़ियाफ़त के लिए मेरे पास पानी भी नहीं है।
اللہ اکبر جب پانی کا لفظ سنا اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا. فرزند رسول نہ دہرائیے نہ دہرائیے, آج میں اس خطا کو اپنے خون سے دھونے کے لیے آیا ہوں, اپنے خون سے دھونے کے لیے آیا ہوں. ادھر طبل جنگ بجا, ادھر حر نے کہا فرزند رسول مجھے جانے کی اجازت ہو. حسین نے کہا تم ہمارے مہمان ہو, تم ہمارے مہمان ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مہمان کو بھیج دیں. کہا مہمان نہیں خطا کار ہوں, جلد سے جلد اس خطا کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں, ادھر اجازت ملی ادھر ہور میدان میں لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرا. حسین ابن علی کو سلام آخر کیا, حسین اپنے مہمان کے لاشے پر پہنچے سر پھٹا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کمال شفقت حسین ابن علی, جیب سے رومال فاطمہ نکالا.